नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों अमेरिका की मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड रैमस्टेल तथा जापान के शिमोन सागागुची को प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने से संबंधित खोज के लिए दिया जाएगा। कतर ने भारत के यूपीआई को अपनाया, ये दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में नई महत्वपूर्ण उपलब्धि। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुखोनो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में भूकंप प्रभावित हजारों लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील की। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमरीकी वैज्ञानिक मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड रैमस्टेल तथा जापान के शिमोन सागागुची को मेडिसिन तथा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हजारों विभिन्न सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा कैसे करती है। नोबेल समिति ने स्वीडन के स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की। ये खोज सफेद रक्त कोशिकाओं की पहचान से जुड़ी है। ये पुरस्कार तीनों विजेताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कतर की राजधानी दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का शुभारंभ किया। ये भारत और कतर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर है। एक रिपोर्ट।
श्री गोयल ने कतर नेशनल बैंक को अपनी भुगतान प्रणालियों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को एकीकृत करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में उन्होंने कतर के अन्य बैंकों को भी यूपीआई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों को जोड़ने, व्यापार को सुगम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर मीडिया से बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश औपचारिक एफटीए वार्ता शुरू करने पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि एक सफल मुक्त व्यापार समझौता वर्ष 2030 तक भारत और कतर के बीच व्यापार तथा व्यवसाय को दोगुना करने में मदद कर सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की तथा दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में हडसन इंस्टीट्यूट के वॉल्टर रसेल मीट के नेतृत्व में एक अमरीकी शिष्टमंडल के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत में भू राजनीतिक घटनाक्रमों और भारत अमरीका साझेदारी के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में भारत और अमरीका के बीच रणनीतिक और आर्थिक मोर्चों के बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुखोनो ने आज अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। वे सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उनके इस्तीफे से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहले से कमजोर सरकार नेतृत्व के बढ़ते संकट के बीच और कमजोर हो गई है। श्री लुखोनो 2 साल से कम समय में ये पद संभालने वाले 5वें व्यक्ति थे जिसे 2024 के मध्यावधि चुनावों के बाद से फ्रांस में जारी अस्थिरता का पता चलता है। मध्यावधि चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उनके इस्तीफे से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहले से ही कमजोर सरकार नेतृत्व के बढ़ते संकट के बीच और कमजोर हो गई है। अमेरिका में सरकारी कामकाज आज 6वें दिन भी ठप रहा। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टियों के सांसदों के बीच फंडिंग को लेकर गतिरोध है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की चेतावनी दी है। इससे तनाव बढ़ गया है। सीनेट संसद के ऊपरी सदन प्रतिद्वंद्वी फंडिंग विधेयकों पर मतदान के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गतिरोध के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में भूकंप प्रभावित हजारों लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय समन्वयक इंद्रिका दत्वाटे ने आश्रय और स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रारंभिक आकलनों से पता चलता है कि 6,000 से ज्यादा मकान नष्ट हो गए हैं, जिससे परिवार कठिन परिस्थितियों में असुरक्षित हो गए हैं। पूर्वी प्रांतों में लगभग 5,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। मानवीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती ठंड और सीमित सहायता पहुंच संकट को और गहरा कर सकती है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में पंजाब प्रांत में तेज वर्षा और तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 28 घायल हो गए हैं। बचाव अधिकारियों ने कई जिलों में छत और दीवारें गिरने की खबरों की पुष्टि की है। शेखपुरा और लाहौर में ढही इमारतों के कारण लोग घायल हुए हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिकॉर्ड वर्षा की सूचना दी है और उत्तरी तथा मध्य पंजाब में लगातार वर्षा की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के निकट भारी बर्फबारी में फंसे सैकड़ों हाइकर्स की सहायता में बचाव कर्मी जुटे हुए हैं। लगभग 350 यात्री टिंगरी काउंटी में एक स्थान पर एकत्रित हुए, जबकि अन्य 200 से संपर्क स्थापित किया गया। टिंगरी काउंटी माउंट एवरेस्ट के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और यहां से उत्तरी एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी और वन क्षेत्र के पैदल यात्री हाइकर्स 4,900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फंस गए थे। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती।
शुरुआत महिला क्रिकेट विश्व कप से, जहां आज इंदौर में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका के लिए ताजमीन ब्रिट्स ने सर्वाधिक 101 रन की शतकीय पारी खेली, वहीं सुनील उस्त ने नाबाद 81 रन बनाए। इससे पहले न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर में 231 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की नॉन कुलुलेको मलाबा ने 10 ओवर में 40 रन देकर न्यूजीलैंड के 4 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान सोफी डिवाइन ने सबसे अधिक 85 रन का योगदान दिया। प्रतियोगिता में कल कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से करारी शिकस्त दी। भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका से होगा। उधर अबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2025 में प्रमोद भगत ने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित टूर्नामेंट में प्रमोद ने अपने ही देश के मंटू कुमार को एक खिताबी मुकाबले में हराकर पुरुष सिंगल्स का SL3 खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने अंत कदम के साथ मिलकर पुरुष डबल्स में पेरू की जोड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त देकर एक और स्वर्ण अपने नाम किया। प्रमोद ने आरती पाटिल के साथ मिलकर मिक्स डबल्स SL3 SU5 वर्ग में 3रा स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में पदक जीते। इधर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 22 पदक जीतकर खिलाड़ी ने अपने उत्साह और दृढ़ संकल्प से देश को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद इस सप्ताह 2 नए अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रियट्स फॉर यूरोप और द लेफ्ट ने यूरोपीय संघ अमेरिका व्यापार समझौते और यूरोपीय संघ मर्कोसुर समझौते की उनके संचालन पर अलग अलग प्रस्ताव पेश किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों अमेरिका की मैरी ई ब्रुन को और फ्रेड रैमस्टेल तथा जापान के शिमोन सागागुची को प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने से संबंधित खोज के लिए दिया जाएगा। कतर ने भारत के UPI को अपनाया, ये दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में नई महत्वपूर्ण उपलब्धि। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन बुखोनो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में भूकंप प्रभावित हजारों लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील की। और ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।